ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं
नारायणं नमस्कृत्यं
नरं चैव नरोत्तमं
नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वती व्यासं
देवीं सरस्वती व्यासं
ततो जयमुदीरये
ततो जयमुदीरये
नष्टप्रायेषु भद्रेषु
नष्टप्रायेषु भद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया
नित्यं भागवत सेवया
भगवते उत्तम श्लोके
भगवते उत्तम श्लोके
भक्ति भवति नैष्ठिकी
भक्ति भवति नैष्ठिकी
श्रीमद्भागवतम स्कंदे अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 8 शब्दों का परिचय तृतीयम ऋषि सर्गम वै देवर्षित्वम् उपेत्या
स
तंत्रम् सात्वतम् आचष्ट निष्कर्म्यम् कर्मणाम् यतः तृतीयम् ऋषि सर्गम् वै तृतीयम् ऋषि सर्गम् वै देवर्षित्वम् उपेत्य सः देवर्षित्वम् उपेत्य सः तन्त्रम् सात्वतम् तन्त्रम् सात्वतमाचष्ट तन्त्रम् सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यम् कर्मणाम् यतः नैष्कर्म्यम् कर्मणाम् यतः तृतीयम् ऋषि सर्गम् वै देवर्षित्वम् उपेत्य सः तन्त्रम् सात्वतम् तन्त्रम् सात्वतम् आचष्ट नैष्कर्म्यम् कर्मणाम् यतः तृतीयम् ऋषि सर्गम् वै देवर्षित्वम् उपेत्य सः तन्त्रम् सात्वतम् आचष्ट निष्कर्म्यम् कर्मणाम् यतः
तृतीयम्
ऋषि सर्गम् वै
देवर्षित्वमुपेत्य स तन्त्रम् सान्त्वतया तन्त्रम् सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यम् कर्मणाम् यत
तृतीयम् ऋषि सर्गम् वै
देवर्षित्वमुपेत्य स
तन्त्रम् सात्वतमाचष्ट
नैष्कर्म्यम्
कर्मणाम् यत
तृतीयम् ऋषि सर्गम् वै
देवर्षित्वमुपेत्य स
नैष्कर्म्यम् कर्मणाम् यत
तृतीयम् ऋषि सर्गम्
तृतीयं ऋषि सर्वं वै
देवं सेवितं उपेत्य स
तन्त्रं
सात्वतम् आचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यथा
शब्दों का अनुवाद तृतीयम तीसरा ऋषि सर्गम ऋषि सर्ग वै निश्चय ही देवर्षित्वम देवताओं में ऋषि का अवतार उपेत्य स्वीकार करके स उन्होंने तंत्रम वेदों का भाष्य सात्वतम विशेष रूप से भक्ति के लिए आचष्ट संग्रह किया निष्कर्म्यम निष्काम कर्मणाम कर्म का यतः जिससे अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति विरान स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की अनुवाद। ऋषियों के सर्ग में भगवान ने देवर्षि नारद के रूप में जो देवताओं में महर्षि हैं तीसरा सत्यवेश अवतार ग्रहण किया। उन्होंने उन वेदों का भाष्य संकलित किया जिनमें भक्ति मिलती है और जो निष्काम कर्म की प्रेरणा प्रदान करते हैं। तात्पर्य भगवान के सत्यवेश अवतार महर्षि नारद संपूर्ण जगत में भक्तिमय सेवा का प्रचार करते हैं। ब्रह्मांड में सर्वत्र विभिन्न लोकों में तथा समस्त योनियों के सारे बड़े बड़े भगवत भक्त उनके शिष्य हुए। श्रीमद् भागवत के संकलनकर्ता श्री व्यासदेव भी उनके ही शिष्य में से एक हैं। नारद पंचरात्र जो भगवत भक्ति विषय वेदों का भाष्य है उन्हीं के द्वारा रचित है। यह नारद पंचरात्र कर्मियों के कर्म बंधन से मुक्त दिलाने की शिक्षा देता है। बद्ध जीव अधिकांश सकाम कर्म के प्रति आसक्त होते हैं क्योंकि वे अपने श्रम द्वारा जीवन का आनंद भोगना चाहते हैं। यह सारा ब्रह्मांड समस्त योनियों में योनियों के सकाम कर्मियों से भरा पड़ा हुआ है। सभी प्रकार के आर्थिक विकास योजनाएं इन सकाम कर्मों में सम्मिलित हैं। किंतु प्रकृति का नियम यह है कि प्रत्येक क्रिया की परिणामकारी प्रतिक्रिया होती है और कर्म करने वाला अच्छे या बुरा कर्म से फंसा बंधा होता है। अच्छे कर्म का फल तदनुरूप भौतिक प्रसन्नता जबकि बुरे कर्म का फल तदनुरूप भौतिक कष्ट होता है। फिर भी भौतिक दशाएं चाहे वे तथाकथित सुख या दुख हो अंततः दुख का ही कारण बनते हैं। मूर्ख भौतिकवादियों को यह पता नहीं होता है कि मुक्त अवस्था में शाश्वत सुख कैसे प्राप्त करना चाहिए। श्री नारद इन मूर्ख सकाम कर्मियों को बताते हैं कि किस प्रकार वास्तविक सुख प्राप्त करना चाहिए। वे संसार के रुग्ण मनुष्यों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार उनके वर्तमान पेशे से उनका आध्यात्मिक उत्थान हो सकता है। वैद्य दूध की बनी वस्तु खाने से अपच से पीड़ित रोगी को दूध से ही बनी दही खाने का उपचार बताता है। अतः रोग का कारण तथा उसका उपचार एक ही हो सकता है किंतु उपचार करने वाले को नारद के समान कुशल वैद्य होना चाहिए। भगवद्गीता का भी यही उपदेश है कि अपने श्रम के फल से भगवान की सेवा करनी चाहिए, इससे नैष्कर्म्य या मुक्ति का पथ सुलभ हो सकता है। ओम ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजनाशलाकय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले शिवं रूपकदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सावन रघुनाथानितं तं सजीवं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सर्वना ललिता श्री विशाखां कंस हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी विशदानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये चल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तीसरा अध्याय आठवां श्लोक तृतीयमसि सर्वं वै देवर्षि त्वं प्रपत्यशः तंत्रम शाश्वतम आचस्य नैष्कर्म्य कर्मणा यतः यतः जिसमें निष्काम कर्म का वर्णन किया गया है ऐसा है ना यतः मतलब
श्रीमद् भागवतम में शुरू से सुनते आ रहे हैं हम लोग कि मुनि ऋषियों ने प्रश्न पूछते हैं उसमें से एक प्रश्न था कि अवतारों के बारे में वर्णन तो अलग अलग प्रश्नों का जवाब देते देते यहाँ पे सुत गोस्वामी भगवान के अवतारों का वर्णन चालू करते हैं तीसरे अध्याय में। तीसरे अध्याय के शुरुआत के पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवें श्लोक में लगभग भौतिक ब्रह्मांड की सृष्टि के बारे में थोड़ा सा ज्ञान दिया गया और मुख्यतः उसका उद्देश्य यह था कि तीन पुरुष अवतारों का वर्णन करना। जैसे हम लोगों ने सुने भगवान के अनेकों अवतार हैं मगर छह उन सारे अवतारों को छह प्रकार ना विभाग किया जा सकता है और छह प्रकार अवतारों में से एक अवतार क्या है पहला पुरुष अवतार उसके बाद मन्वंतर अवतार लीला अवतार गुणावतार सत्यावेश अवतार और युग अवतार इस प्रकार से छह अवतार होते हैं छह प्रकार के अवतार होते हैं। छह प्रकार के अवतारों में से पहला अवतार जो है पुरुष अवतार उसका वर्णन उन्होंने किया कि पुरुष अवतार कितने हैं तीन है ना तीन पुरुष अवतार होते हैं कारण दक्षाई गर्भ दक्षाई और शिरो दक्षाई। अभी उन्होंने चालू किए सत्यावेश अवतारों का वर्णन करना कि सत्यावेश अवतारों का वर्णन करते करते तीसरे तक पहुंचे उन्होंने। सबसे पहले वो बताते हैं छह नंबर श्लोक में पांच नंबर श्लोक तक पुरुष अवतारों का वर्णन छह नंबर श्लोक में सात नंबर श्लोक में पहला दो सत्यावेश अवतारों का वर्णन करते हैं। सबसे पहले सत्यावेश अवतार कौन सा हुए थे चार कुमार हुए। चार कुमार कौन है ब्रह्मा जी के चार लड़के जो सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए मगर ब्रह्मा जी के आदेश था सृष्टि करने के लिए परंतु उन्होंने अपने पिताजी को निवेदन किए कि हमें कुमार ही रहना है ब्रह्मचर्य व्रत का ही पालन करना है क्योंकि भगवत सेवा के लिए वो आगे ये जो घर गृहस्थ के झंझट में वो नहीं पड़े पिताजी के आदेशों को पालन करना चाहिए बच्चों को मगर इस मामले में नहीं शादी के मामले में नहीं वो पिताजी के आदेशों को ठुकरा सकता है मैं शायद नहीं समझ रहे क्या तेरे लिए भूल रहा हूँ तो यहाँ पे वो ठुकरा सकता है बच्चा मगर पिताजी तो पिताजी है उनको तो गुस्सा आता ही है ब्रह्मा जी को गुस्सा आया था। दूसरे अवतार में सुत गोस्वामी कहते हैं शुक्र अवतार है ना सूअर बन गए थे भगवान सुध से उत्तर का मैसेज नारद मुनि के बारे में आगे पढ़ते हैं क्या लिखे जब आएगा तो दूसरे अवतार में भगवान बताते हैं दूसरे अवतार के बारे में बताते हैं शुकर अवतार या वराह अवतार। वराह अवतार प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तरीके से तात्पर्य लिखते हैं उसमें भगवान स्वर भी बनने के लिए पीछे नहीं हटे क्यों स्वर बन गए क्योंकि स्वर का काम क्या होता मालूम है गंदगियों से कुछ चीजों को निकालना अपना खाना है ना। तो यहाँ पे बदमाशों ने पृथ्वी को कहाँ लेके चले गए थे, रसातल में, नीचे की ओर के सभी लोग सब गंदगी होता है ना। तो इसलिए प्रभुपाद बोलते कि गंदगी से पृथ्वी को उठाना था ना, इसलिए भगवान ने सुअर बन गए। मगर सुअर बनने पर भी अपने भगवत्ता के स्तर पे वो बने रहते हैं। भगवान अपने भगवत्ता के स्तर से कभी नहीं उतरते, भले वो सुअर बनते हैं, भले वो मछली बनते हैं, भले वो कुछ भी बनते हैं। अभी ये तीसरा, ये आठवां श्लोक में बताया गया कि तृतीय मतलब तीसरे अवतार में वो ऋषियों में श्रेष्ठ देवर्षि, देवताओं की ऋषि नारद मुनि बनते हैं। ये नारद मुनि भी भगवान का अवतार है, नारद मुनि भी भगवान का अवतार है। तो कौन से अवतार हैं? सत्यावेश अवतार, और वो चार कुमार भी सत्यावेश अवतार। बरा भगवान कौन सा अवतार है? लीला अवतार, बरा भगवान लीला अवतार। तो चार कुमार और ये नारद मुनि, ये दोनों सत्यावेश अवतार हैं। ये सत्यावेश अवतार मतलब क्या है, ये थोड़ा थोड़ा सा एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए। सत्यावेश अवतार, लीला अवतार मतलब लीला करते हैं। सत्यावेश अवतार का अर्थ होता है किसी एक जीवात्मा के ऊपर विशेष शक्ति को प्रदान करते हैं भगवान, उसको भी अवतार माना जाता है। देखिए नारद मुनि भगवान नहीं थे, वो एक व्यक्ति थे। आगे जाके चौथे अध्याय, जब चौथा अध्याय चालू होगा आप पढ़ेंगे नारद मुनि का, नारद मुनि बने कैसा। वो किसी एक नीच जाति के स्त्री के बच्चे थे वो पूर्व जन्म में, और उन्होंने कैसे कैसे करके साधु संघ हुआ, साधु उनका माँ सांप काटने से मर गई, फिर साधु साधुओं के गांव में चले गए, उनकी सेवा किए, उनसे सुने सीखे खाए, फिर बाद में उन्होंने शरीर छूटा तो फिर वो भगवत भक्त बन गए। तो एक जीवात्मा है ना, मगर यहाँ पे तो बताया गया भगवान का अवतार है। तो ये कैसे, क्योंकि सत्यावेश अवतार का अर्थ होता है कोई एक जीवात्मा होता है अपने जैसा, उस जीवात्मा को भगवान एक विशेष शक्ति प्रदान करते हैं, उसको कहते हैं सत्यावेश अवतार। जैसे परशुराम जी भी, परशुराम जी भी भगवान के अवतार में गिने जाते हैं। जय श्री जगन्नाथ, परशुराम जी को भी सत्यावेश अवतार में गिना जाता है। वो भी एक व्यक्ति थे परशुराम, मगर भगवान ने दुष्ट संहार शक्ति, दुष्टों को विनाश करने का जो पावर है, जो शक्ति है, वो किसके अंदर डाल दिया, परशुराम के अंदर, तब वो अवतार बन गए। ठीक वैसे यहाँ पे ये आगे चौथे अध्याय में आप पढ़ेंगे तो ये नारद मुनि जो है वो कोई एक बच्चे थे, वो साधु संघ किए, भगवत कृपा से, भक्तों की कृपा से, ये निकलने के कारण बहुत बड़े भक्त बने। मगर यहाँ पे बोलते हैं कि भगवान के अवतार है, कैसे, क्योंकि भगवान ने उनके अंदर शक्ति प्रदान किए थे। तो यह कौन सी शक्ति प्रदान किए थे, कौन सी शक्ति, कौन सी शक्ति बोली नारद मुनि, भक्ति शक्ति, भगवान की जो भक्ति का शक्ति है वो उनके अंदर प्रदान किया गया। इसलिए आप देखेंगे नारद मुनि के पूरे लीलाओं को जहां पे भी जाएंगे भक्ति का प्रभाव, जिससे भी मिलेंगे भगवान के भक्ति के बारे में बताएंगे। कितने लोगों को उन्होंने प्रचार करके डिवोटी बनाया, बहुत लोगों को, ये भक्ति शक्ति उनको प्रदान की गई। तो ये नारद मुनि जो है भगवान की भक्ति शक्ति का अवतार है, इसलिए तीसरे अवतार में इनको यहाँ पे सूत्र गोस्वामी गिनते हैं। तो ठीक है आगे देखते हैं, ये अवतार हुआ कहाँ पे, ऋषियों में। कितना अवतार है, तीसरे में। फिर आगे कहा गया है सह, सह मतलब उन्होंने तंत्रम शाश्वत, ये शाश्वत तंत्र, शाश्वत तंत्र मतलब एक्चुअली तंत्र मतलब प्रभुपाद जी ने यहाँ पे ट्रांसलेट करते हैं कि वेदों का भाष्य। क्या इतना कॉम्प्लिकेटेड ना करके उनको सीधा समझना चाहिए कि शास्त्र या वेद, लेकिन वेद शाश्वत वेद क्या है, तंत्र मीन्स वेद, शाश्वत वेद क्या है, शाश्वत मतलब सात्वत क्या है, सात्वत मतलब जो भक्ति प्रदान करने वाली, समझ गए, जो भक्ति प्रदान करने वाली, तो उसको सात्वत तंत्र कहा जाता है। सात्वत तंत्र आचष्ट संग्रह किया, तो ये नारद मुनि जो भगवान के सत्यावेश अवतार है, उन्होंने भक्ति को प्रदान करने वाले वेदों को या भक्ति को प्रदान करने वाले ग्रंथों को क्या किया, संग्रह किया या लिखा या वर्णन किया या हम लोगों को प्रदान किया, है कि नहीं। आचष्ट, तो ये ग्रंथ कैसे हैं, ये सात्वत ग्रंथ, ये नैष्कर्म्य कर्मणाम यतः, जिसमें या जिससे निष्काम कर्म के बारे में शिक्षा प्राप्त होता है, निष्काम कर्म के बारे में हमें शिक्षा प्राप्त होता है, ऐसे ग्रंथों को भगवान नारद मुनि ने प्रदान किया। ये भगवान शब्द नारद मुनि के लिए यूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि भगवान के अवतार हैं। ये भगवान शब्द कभी कभी बड़े बड़े लोगों के लिए भी व्यवहार किया जाता है, यूज किया जाता है, मगर वो जो भगवान वो किसमें आलंकारिक शब्द के रूप में, खास करके संबोधनात्मक ढंग से कहीं कहीं पे भगवान करके शब्द, भगवान शिव, भगवान नारद, भगवान ब्रह्मा करके यूज किया जाता है, मगर असलियत में भगवान तो कृष्ण है, अकेला ईश्वर कृष्ण, वो स्वयं भगवान है। तो इसको थोड़ा, ये नारद मुनि का एक्चुअली दो दिनों से लटक रहा था ये सब, क्योंकि रघुनायक को बोल रहा था नारद मुनि का कथा है, बोलो बोलो, वो बोलते नहीं थे, मुझे भी टाइम। और ये नारद मुनि के बारे में असलियत में उनके जन्म की कथा अगर बताएं तो वैसे तो चौथे अध्याय में आने ही वाला है, एक एक श्लोक आएगा, नारद मुनि पहले जन्म में क्या थे, कैसे थे, वो सब सब आएगा डिटेल्स। इसलिए नारद मुनि के जन्म के बारे में उतना चर्चा हम नहीं करेंगे, मुख्यतः हम विशेष ध्यान देंगे प्रभुपाद जी के तात्पर्य के ऊपर। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में ध्यान देते हैं किसके ऊपर मालूम है, ये सात्वत तंत्र के ऊपर, ये शब्द को पूरा तात्पर्य में वो वर्णन करते हैं, सात्वत तंत्र। तो सात्वत तंत्र मतलब मैंने क्या बताया, भक्ति प्रदान करने वाली ग्रंथ या शास्त्र, वो शास्त्र जो भक्ति को प्रदान करता है, ऐसा शास्त्र उसको सात्वत तंत्र कहा जाता है। वैसे डायरेक्टली सात्वत तंत्र मतलब अनेक आचार्यों ने लिखते हैं कि सात्वत तंत्र मतलब कुछ और नहीं है, नारद पंचरात्र है, क्या है, नारद पंचरात्र, उसको सात्वत तंत्र कहा गया है, विद्वानों ने उसको सात्वत तंत्र कहते हैं, और इसको सीधा सीधा सभी जगह पे ये बताया गया कि सात्वत तंत्र का अर्थ नारद पंचरात्र ही है, क्योंकि ये नारद पंचरात्र ही नारद मुनि के द्वारा रचना किया गया था, तो इसलिए वो सातों का मंत्र है। तो इसमें दो चीजें, दो विभाग आज हम लोग जानेंगे, दो विषय पर मैं चर्चा करूंगा। एक है ये पंचरात्र क्या है और ये नारद पंचरात्र क्या है। वैदिक ज्ञान में, वैदिक वांग्मयी जो ज्ञान है उसमें ये पंचरात्र का स्थान क्या है, और साथ साथ में ये नैष्कर्म्य कर्मणा क्या है, ये दो चीज हम लोग आज सुनेंगे इस श्लोक से मुख्यतः। तो पहला पंचरात्र क्या है, पंचरात्र वैदिक ज्ञान में पंचरात्र का स्थान क्या है, और ये पंचरात्र में ये जो बताया गया नैष्कर्म्य कर्मणा वो क्या होता है, नैष्कर्म्य कर्मणा, ये चीज हम लोग चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा वेदों के ज्ञान और वैदिक ग्रंथों के बारे में थोड़ा सा सुनेंगे। एक्चुअली ये एक ही बार में याद नहीं रहेगा, कॉम्प्लिकेटेड है, मैं इसमें लिखूंगा, एक श्लोक का तो हो गया और लिख के बताऊंगा। असलत में संसार में जितने भी सारे ज्ञान है वो सारे ज्ञान का उच्च यानी स्रोत वो क्या है, वेद। ये वेद का अर्थ होता है नॉलेज, वेद मीन्स नॉलेज। वेद ये वर्ड कहां से आता है मालूम है, वित शब्द से आता है, वित मतलब ज्ञान, जानना, उसको ज्ञान कहा जाता है। वेद को पहले वेद नहीं कहा जाता था, वैसे श्रुति कहा जाता था, श्रुति, श्रुति मतलब जिसको सुन के याद रखा जाता है वो वेद है, और वैसे ये एक ही हुआ करता था। बाद में श्री व्यास देव जी ने हम लोगों की भलाई के लिए, क्योंकि उनको मालूम था है ना, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या उपहलता, वो हम लोग याद नहीं रख सकते हैं, ऐसे गए गुजरे हुए दिमाग के, तो उन लोगों ने लिख के दिया हमको, और वो भी लिखा कैसा, चार भाग कर दिया उसको, ऋग साम यजुर अथर्व, ऐसे ही पूरे वैदिक ज्ञान को उन्होंने चार भागों में विभक्त करके दिया। केवल ये चार चीजें ही वैदिक ज्ञान नहीं, उसमें बहुत सारे पुराण शास्त्र इतिहास न्याय सब कुछ आ जाता है। तो एक छोटा सा डायग्राम मैं आपको यहाँ लिख के अभी दिखाऊंगा, जिससे एक ओवरऑल आइडिया आएगा कि एक्चुअली वैदिक ज्ञान क्या है। वो मैं थोड़ा बता दू, शंकर को बोले क्या होता है, क्या यहाँ पे पेन? क्या है, हम अपने जीवन को कैसे जिएगा, क्या करेंगे, तो श्रुति में वो चीज बताया गया कि क्या करना है हमको, और स्मृति में वो चीज बताया गया कि कैसे करना है हमको, और न्याय मतलब समझ जाना चाहिए क्यों करना है भाई, वो न्याय है, वो न्याय प्रस्ताव में है। ये वैदिक ज्ञान को ऐसे क्लासिफिकेशन किया जाता है, एक्चुअली जितने भी पूरा ज्ञान है उस प्रकार से उसको क्लासिफिकेशन किया जाता है। श्रुति प्रस्थान मुख्यतः तीन भाग होते हैं, श्रुति प्रस्थान वेद, वेदांग, वेद वेदांग उपवेद, श्रुति में तीन होता है वेद वेदांग और उपवेद, श्रुति मतलब। और श्रुति का अर्थ एक ये भी है, श्रुति में ये तीन आता है, वेद उपवेद वेद उपवेद और वेदांग तीन आता है। और श्रुति को और एक चीज से भी याद रख सकते हैं, श्रुति मतलब क्या है, सुनना, श्रुति मतलब
सुनना,
स्मृति मतलब
याद रखना,
ऐसे भी याद रख सकते हैं। और समझने के लिए क्या करना, कैसे करना है, क्यों करना है, ये समझने के लिए। और ये तीन होते हैं वेद उपवेद और वेदांग, ये तो ओवरऑल ही जानते हैं, वेद मतलब चार वेद होते हैं, है ना, उपवेद मतलब वेद से रिलेटेड, जस्ट लाइक जैसे कि धनुर्वेद हो गया, आयुर्वेद हो गया, ये मुख्य वेद नहीं है, वो वेद से रिलेटेड है, वेद से उसको निकाला गया है, उसको
उसको उपवेद कहते हैं, धनुर्वेद आयुर्वेद ऐसे और भी छोटे छोटे वेद होते हैं। और वेदांत में क्या क्या आ जाएगा, जैसे व्याकरण हो गया वो सब उसमें आएगा। उसका और भी बहुत सारा क्लासिफिकेशन है, जो लंबा ट्री है। मैं इसको बताने का उद्देश्य है कि पंचरात्र क्या है और वैदिक ट्री में उसका जगह कहाँ है वो बताने के लिए बता रहा हूँ। इसमें और फिर इसको ये चार भाग में है, सॉरी ये छह प्रकार के हैं, फिर ये एक एक वेद को छह प्रकार में डिवाइड किया गया है, उपनिषद आरण्यक ब्राह्मण्य ऐसे करके वेद को डिवाइड किया गया है, वो अलग चीज है बता नहीं दिया। तो श्रुति में चार है और ये श्रुति स्मृति फिर से तीन हो जाए। स्मृति में फिर से तीन क्या होता है मालूम है, एक होता है धर्म, धर्म पुराण पंचरात्र इतिहास, विचार होता है स्मृति में। धर्म, धर्म क्या है, कौन से ग्रंथों को धर्म कहा जाता है, जैसे मनु महाराज के द्वारा लिखा हुआ मनु संहिता ऐसे ग्रंथों को धर्म में लिया जाएगा। पुराण जैसे व्यासदेव जी के द्वारा रचा हुआ 18 पुराण है, अष्टादश पुराण, और ये हरेक और सारे पुराण को भी तीन भाग में विभक्त किया जाता है, सब सात्विक पुराण रासिक पुराण और तामसिक पुराण है। एक्चुअली मुख्यतः पुराण में सब 18 पुराण व्यासदेव जी के द्वारा रचा है। और ये पुराणों में भी वो तो मुख्य पुराण है, उनमें से भी उप पुराण भी होते हैं। उसमें क्या पुराण होते हैं, उप पुराण होते हैं, और उप पुराण के अंदर में और उपाख्यान भी होते हैं, वो लंबा 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 होता है। उप पुराण किसको कहते हैं, उपाख्यान किसको कहते हैं, और पुराण के तीन प्रकार का होते हैं, सात्विक राशि और इतिहास। इति मतलब बीत चुका, हास मतलब घटनाएं या स्टोरिया, बीती हुई स्टोरिया। तो वो क्या है, जैसे कि मुख्यतः रामायण और महाभारत, ये तो इतिहास है। सभी का उद्देश्य एक ही है, वो क्या है, स्मृति को कैसे करना चाहिए कि क्या करना है, तो आंसर यहां मिल जाएगा, तो कैसे करना है ना, तो इसको बताया जाएगा। फिर ये न्याय में भाष्य, भाष्य मीन्स कमेंटरीज, और भाष्य और इसका क्या है दर्शन, भाष्य और दर्शन
ये न्याय में।
भाष्य मतलब कमेंट्रीज, जैसे कि श्रीमद् भागवतम, और क्या क्या भाष्य कौन बता सकते हैं, और क्या क्या भाष्य, भाष्य वेदांत का भाष्य, वेदांत के भाष्यों का नाम बोलो, नहीं
वेदांत का भाष्य,
और ये पहला भाष्य है वेदांत के ऊपर, और ये भाष्य कौन लिखा था, स्वयं व्यासदेव जी ने लिखा, और वेदांत के ऊपर कौन भाष्य लिखा,
वेदांत सूत्र,
वही वो वेदांत का मतलब वेदांत सूत्र, उसके ऊपर भाष्य, और हाँ क्या नाम है, गोविंद भाष्य,
गोविंद भाष्य
है ना, गोविंद भाष्य, और क्या नाम है, श्री भाष्य है ना, ऐसे ये सब भाष्य में आएगा। और ये दर्शन में फिर छह दर्शन आएंगे, न्याय कर्मीमांसा उत्तरमीमांसा वैशेषिका, वो सब फिर न्याय में आएगा। ये टोटल होता है ये वैदिक ज्ञान के इसमें, उसके अंदर पंचरात्र का स्थान है स्मृति के अंदर। तो स्मृति मतलब मैंने क्या बताया था, कैसे करना है उन चीजों को, वो स्मृति है। तो पंचरात्र में क्या होना चाहिए, कैसे करना है, तो क्या कैसे करना है, श्रुति हमको जो उत्तर देगा क्या करना है, जो उत्तर देगा वो कैसे करना है, वो पंचरात्र बताएगा। ये पंचरात्र समझ में आया, ये वैदिक इसमें यहाँ पे स्थान है। तो अभी प्रश्न उठता है कि पंचरात्र क्या है, पंचरात्र व्हाट इज पंचरात्र, पंचरात्र दो शब्दों से बने, पंच मतलब पांच और रात्र मतलब रात्र, पांच रात में सुनाया गया या पांच रात में सिखा हुआ पंचरात्र। एक्चुअली पंचरात्र का और भी बहुत सारे अर्थ होते हैं, मगर यहाँ पे वर्ड टू वर्ड में यही समझ सकते हैं पंचरात्र, ठीक है।
अभी हम समझेंगे क्या है वो पंचरात्र। पंचरात्र भगवान नारायण के द्वारा दिया हुआ सीधा सीधा इंस्ट्रक्शंस। पंचरात्र क्या है? नारायण के द्वारा दिया हुआ सीधा उपदेश, इंस्ट्रक्शंस। इसका अर्थ क्या करना चाहिए वो भी भगवान नारायण डायरेक्टली स्वयं बताएं, वो पंचरात्र है। कैसे बताएं और किसको बताएं? कभी वो नारद मुनि को, कभी ब्रह्मा जी को, कभी लक्ष्मी जी को और कभी शिव जी को, ऐसे अलग अलग ऋषियों को और भगवान नारायण ने स्वयं इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, वो इंस्ट्रक्शंस को पंचरात्र कहा जाता है। ये उसका उत्तर है। पंचरात्र क्या है? भगवान नारायण कृष्ण से ने नारायण के द्वारा दिया हुआ इंस्ट्रक्शंस, किसको? ब्रह्मा लक्ष्मी शिव और नारद इत्यादि को दिया हुआ इंस्ट्रक्शंस को पंचरात्र कहा जाता है। ये पंचरात्र ऐसे सुनाई सुनने में मिलता है। एक बार ऐसा हुआ, एक बदमाश ने क्या किया था, वेदों को चुरा लिया था। सुना था ना वो कथा? एक बदमाश वेदों को चुरा लिया, तभी ब्रह्मा जी उठ के भगवान को बोले कि अभी वेद ही नहीं रहेगा तो मैं क्या करूंगा सुबह उठ के, मेरा नित्य कर्म क्या करूंगा मैं। तब भगवान नारायण ने उनको उपदेश दिया कि मेरा श्री विग्रह का उपासना करो, मेरे श्री विग्रह का पूजा करो। तो कैसे श्री विग्रह का पूजा करो? तब उन्होंने पूरा विधि बताया, समझ रहे, ब्रह्मा जी को। तो वो उसको पंचरात्र कहा गया। ऐसे कहीं कहीं पे सुनने में मिलता है कि मैंने किसी प्रवचन के प्रवचन में इस चीज को सुना था कि ये होता है ये पंचरात्र। पंचरात्र भी पांच, उसमें भी पांच विभाग होते हैं। पंचरात्र में कितने विभाग होते हैं? पांच विभाग होते हैं। सबसे पहला विभाग है पंचरात्र का कि ज्ञान। पंचरात्र का पहला विभाग क्या है?
ज्ञान,
नॉलेज। क्या ज्ञान? किस प्रकार का ज्ञान? ना मैटर, स्पिरिट एंड सुप्रीम लॉर्ड। मैटर मतलब पदार्थ, और स्पिरिट आध्यात्मिकता, और भगवान स्वयं भगवान परम पुरुष, ये तीनों के बीच में संबंध। और खास करके डीटी जो शिव विग्रह बना हुआ किससे है? पदार्थों से है कि नहीं, मगर वो सुप्रीम लॉर्ड है स्वयं। तो वो चीज वो नॉलेज को प्रदान करता है सबसे पहले, कैसे पदार्थों के द्वारा बना हुआ विग्रह स्वयं भगवान ही है, यह ज्ञान को सबसे पहले प्रदान करता है। इसीलिए सबसे पहला विभाग क्या है पंचरात्र का? ज्ञान। दूसरा विभाग है अर्चन। तो जो पदार्थ और भगवान का ज्ञान दिया गया या श्री विग्रह का ज्ञान दिया गया, उस श्री विग्रह का सेवा किस प्रकार से करें, उनकी विधि विधान इत्यादि जहां बताया गया है उसको कहते हैं अर्चन। तीसरा है योग। तीसरा विभाग क्या है? योग। हाउ टू लिंक वन सेल्फ थ्रू प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉन्शियसनेस विद द एब्सोल्यूट ट्रूथ इन द फॉर्म ऑफ डीटी। मतलब भगवान अभी कौन से फॉर्म में है? मैटर मतलब पदार्थ से बने हुए श्री विग्रह है, तो उस श्री विग्रह की सेवा करके, श्री विग्रह की सेवा करके हमारा चेतना को कैसे हम शुद्ध करके भगवान के साथ हमारा संबंध को जुड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं। योग मतलब क्या है? जोड़ना। तो यहां पे योग कैसा है, हम सेवा करेंगे श्री विग्रह का, श्री विग्रह का सेवा करने से हमारा चेतना कॉन्शियसनेस शुद्ध होता है, और कॉन्शियसनेस शुद्ध होने पर हमारा संबंध श्री भगवान के साथ जुड़ता है। वो चीज यहां बताया गया कि श्री विग्रह की सेवा के द्वारा हमारी चेतना शुद्ध करके भगवान श्री कृष्ण के साथ के संबंध को स्थापना करना, ये योग के विभाग का काम है। समझ रहा है? तीन विभाग। पहला विभाग पदार्थ भगवान में संबंध, श्री विग्रह का ज्ञान, दूसरा श्री विग्रह का अर्चन, तीसरा योग, और चौथा आया चार्य डीटी डेली फेस्टिवल्स और डेली फेस्टिवल्स एंड उसको क्या बोलते हैं, नैमित्तिक उत्सव, नित्य उत्सव और नैमित्तिक उत्सव इसको कहते हैं। तो भगवान की जो प्रतिदिन की उत्सव होते हैं और कभी कभार उत्सव आते हैं, जैसे रथ यात्रा आया, जन्माष्टमी आया, ये नैमित्तिक है ना, और नित्य उत्सव जैसे नित्य श्रृंगार दर्शन है कि नहीं, ये उत्सव है ना, ये श्रृंगार दर्शन, तो ये इन सारे चीजों के बारे में उसमें बताया गया। पांचवा है इंस्टॉलेशन ऑफ डीटीज, श्री विग्रह की स्थापना के बारे में उसमें बताया गया है उसमें, और जो अलग अलग नैमित्तिक फेस्टिवल्स भी आते हैं उसके बारे में, फेस्टिवल के समय पे श्री विग्रह की पूजा और इंस्टॉलेशन के टाइम पे, स्थापना के टाइम पे श्री विग्रह कैसे पूजा होगा, वो सारे चीजें बताया गया है। एस्टेब्लिश वन सेल्फ फुल सरेंडर बाय द परफॉर्मिंग डिवोशनल सर्विस श्री विग्रह, श्री विग्रह की सेवा करके कैसे अब कैसे हम लोग संपूर्ण श्री कृष्ण की शरणागत हो सकते हैं, इसके बारे में संपूर्ण पंचरात्र में हमको शिक्षा दी गई है। ये पंचरात्र केवल नारद पंचरात्र ऐसा नहीं है, पंचरात्र अनेक हैं, मुख्यतः 108 ग्रंथ हैं पंचरात्र का, उसमें से एक है नारद पंचरात्र, और ये नारद पंचरात्र नारद मुनि के द्वारा वर्णित है, मगर उसमें है क्या, शिव जी के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया गया है नारद मुनि को। नारद पंचरात्र में विशेषता यह है कि शिव जी इंस्ट्रक्शन देते हैं किसको, और नारद मुनि उसको वर्णन करते हैं, ये नारद पंचरात्र है। तो जितने भी वैष्णव संप्रदाय हो चुके हैं अभी तक, ये सारे वैष्णव संप्रदाय पंचरात्र के अनुसार ही अपना नित्य और नैमित्तिक कार्यों को नक्की करते हैं या तय करते हैं या डिसाइड करते हैं, हम डेली हम क्या कर रहे हैं, कभी कभी हम क्या करेंगे, उसको नित्य मतलब डेली, जैसे मंगल आरती, जपा, चार नियमों का पालन करना और पढ़ाई करना, ये सब चीजें नित्य होता है ना, ये नित्य सेवा, और नैमित्तिक जैसे उपवास रखना एकादशी में और उत्सवों में उपवास रखना, फेस्टिवल्स मनाना, इसको नैमित्तिक कहते हैं। ये जो नित्य और नैमित्तिक नियम है ये किसके आधार पर बनता है, पंचरात्र के ग्रंथों के आधार पर ही बनता है, चाहे कोई भी वैष्णव संप्रदाय हो, और श्री विग्रह की सेवा भी पंचरात्र के ग्रंथों के आधार पर ही बनता है। मुख्यतः बड़े पैमाने में और सुंदर तरीके से पंचरात्र के विधि के अनुसार श्री विग्रह की सेवा श्री रामानुजाचार्य पहले बार प्रतिस्थापना किए थे पूरे भारत भर में, उन्होंने उसको स्थापना किया था। और खास करके हम जो गौड़ीय वैष्णव है, श्री चैतन्य महाप्रभु और रूप गोस्वामी के अनुयायी है, हम लोग मुख्यतः ये रूप पंचरात्र ग्रंथों में से नारद पंचरात्र ग्रंथ को ज्यादातर हम लोग ये करते हैं, फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे गुरु शिष्य परंपरा में नारद मुनि आते हैं, है कि नहीं? हमारा परंपरा कैसा, भगवान कृष्ण से, ब्रह्मा से, नारद से, व्यास, मध्व, लक्ष्मीपति तीर्थ और कौन है उसके बाद, माधवेंद्र पुरीपाद, ईश्वरपुरी, श्री चैतन्य महाप्रभु, फिर सर्वगोस्वामी और उसके बाद के आचार्यों को तो हम लोग जानते हैं। तो ये हमारा गुरु शिष्य परंपरा है। हम ब्रह्म संप्रदाय में आते हैं तो नारद मुनि हमारे लिए मूल गुरु हैं, ब्रह्मा जी के बाद सेकंड, इसलिए हम लोग नारद पंचरात्र को ज्यादातर फॉलो करते हैं। हमारा जो दीक्षा पद्धति है, हमारा जो डीटी वर्शिप है, और हमारा सुबह सुबह 4 बजे से लेकर रात को सोने तक का जो भी हमारा टाइमिंग्स है ना, रूल्स एंड रेगुलेशन है, प्रभुपाद जी ने उसको नारद पंचरात्र इत्यादि को ध्यान में रखते हुए बनाया है। इवन जो श्री सनातन गोस्वामी जी के द्वारा वर्णित हरिभक्ति विलास और गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा रचना किया गया सत्क्रिया सार दीपिका, ये सारे ग्रंथ जो है नारद पंचरात्र के ऊपर आधारित है। तो हमारे लिए गौड़ीय वैष्णवों के लिए क्या करना क्या नहीं करना, नित्य कर्म क्या है, नैमित्तिक कर्म क्या है, ये सारे चीजें मुख्यतः हरिभक्ति विलास और सत्क्रिया सार दीपिका इत्यादि में वर्णन किया गया। और यह हरि भक्ति विलास सत्प्रिय सार विधि का यह आधार किसका है? यह नारद पंचरात्र का आधार पर इस चीज को लिखा गया। हालांकि श्रील सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी इन लोगों को श्री चैतन्य महाप्रभु का सीधा इंस्ट्रक्शन था शिक्षा, मगर श्री चैतन्य महाप्रभु को उन शिक्षाओं को उन्होंने क्या किए, शास्त्रों के प्रमाणों को रख के उन्होंने वर्णन किए। तो इसीलिए ये पंचरात्र खास करके हम वैष्णवों के लिए बहुत मुख्य भूमिका को ये निभाता है, और हमारे लिए नारद पंचरात्र बहुत ही मुख्य भूमिका को निभाता है। कभी भी अगर कोई विद्वानों में अगर हमको पूछा जाता है तुम्हारा जो दीक्षा पद्धति है कौन से शास्त्रों के आधार पर होता है, तो हमको तुरंत बोलना चाहिए कि नारद पंचरात्र के अनुसार हमारा दीक्षा पद्धति है, उनको हम ऐसे जवाब दे सकते हैं। तो ये नारद पंचरात्र है, 108 पंचरात्र ग्रंथों में से एक नारद पंचरात्र है। और ये नारद पंचरात्र क्या है, उस शिव जी के द्वारा इंस्ट्रक्शन नारद मुनि को दिया गया है। मगर मैंने सुन रहा था कल कि शंकराचार्य ने पंचरात्र के ग्रंथों को प्रामाणिक नहीं मानते हैं। शंकराचार्य वो अपने कमेंट्री में लिख दिया कि ये वैदिक नहीं है, ऐसा उन्होंने सीधा लिखा। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि आप देखेंगे जो फर्स्ट श्रुति सेक्शन है ना वो ही वैदिक है, बाकी सब बाद में ऐसे रचना किया गया। मगर पुराणों को न्यायों को न्यायों में से भी कुछ नहीं, तो पुराणों में से वो स्वीकार करते हैं क्योंकि वो व्यासदेव जी के द्वारा ही रचित है, क्योंकि वेद व्यासदेव जी ने लिखा था, इसलिए ये पंचरात्र को उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। मगर हमारा वैष्णव पंचरात्र के ऊपर ही चलता है, हमारा पूरा कार्यकलाप सब पंचरात्र के अनुसार। तो ये है क्या पंचरात्र? पंचरात्र में वेद पुराण न्याय इन सबका समन्वय है, इन सबका समन्वय। क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, सब इकट्ठा रख दिया गया है, ये पंचरात्र है। समझ में आ रहा है? पंचरात्र ग्रंथ ऐसा है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, सबको समन्वय उसमें इकट्ठा करके वो रखा गया है, वो पंचरात्र है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के ऊपर, बस यहां प्रणाम करो तो वो फल प्राप्त होगा, सीधा इंस्ट्रक्शन, ये कार्य करो। मगर आप वेद में घुसेंगे तो एकदम भोखला जाएंगे हम लोग, इतना घुमा फिरा के वो नाक का पकड़ाते हैं वेद में, वो व्यक्ति पागल हो जाएगा उसमें। इसलिए ये सारे चीजें सिंपल है हम लोगों को समझने के लिए, इसलिए हमारे आचार्य लोगों ने इन सारे ग्रंथों के आधार पर ही हम लोगों को ये बताया। तो ये हो गया पंचरात्र, समझ में आया पंचरात्र क्या है? आया थोड़ा थोड़ा याद तो नहीं रहेगा, कम से कम समझना चाहिए, कम से कम तसल्ली होना चाहिए कि कितना सिस्टमेटिक है अपना सब है कि नहीं। ये पंचरात्र है। अभी दूसरा शब्द है उस श्लोक का, श्लोक तो वाणी है, नैष्कर्म्य कर्मणा यतः। उस पंचरात्र में नैष्कर्म्य कर्मणा, कर्मणा कर्म, नैष्कर्म्य निष्काम, निष्काम कर्म के बारे में बताते हैं। प्रभुपाद जी पूरा तात्पर्य उसके ऊपर लिखते हैं। नारद मुनि अपने पंचरात्र ग्रंथ में, नारद पंचरात्र में निष्काम कर्म के बारे में बताते हैं। तो ये निष्काम कर्म क्या है आप सबको मालूम है ना? क्या है? जिस कार्य में, कर्म मतलब कर्म, निष्कर्म मतलब वो कार्य जिसमें किसी भी प्रकार की कामना इच्छा प्राप्ति रिटर्न पाने की इच्छा नहीं, वो निष्काम कर्म है। कर्म तीन प्रकार के होते हैं, क्या क्या है? कर्म, विकर्म, अकर्म। कर्म मतलब शास्त्र में जो करने के लिए बोला गया मगर उसमें ये है, ये करोगे तो ये मिलेगा। आपने एकादशी का ग्रंथ पढ़ा, पाप मोचनी एकादशी, ये एकादशी करने से ये ऐसे ऐसे पाप क्षय होगा। वो प्राप्ति की इच्छा से करना मतलब वो सकाम कर्म है ना, वो कर्म माना जाएगा। कर्म मीन्स प्रेस्क्राइब ड्यूटी, गृहस्थ है तो उसके लिए प्रेस्क्राइब किया गया, क्षत्रिय है उसके लिए प्रेस्क्राइब किया गया, वो कर्म है। उससे पुण्य मिलेगा, उसमें से सुख मिलेगा व्यक्ति को। और एक होता है विकर्म, विकर्म मतलब जो करने के लिए मना किया गया उसको कहते हैं विकर्म। उसमें व्यक्ति को क्या मिलेगा मालूम है? टेम्पररी सुख लगेगा उसको, मगर अंत में दुख ही दुख है, अभी भी बाद में भी, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी क्या है, दुख। दुख तो कौन से कार्य से, विकर्म से ना, विकर्म। तो ये अकर्म क्या है, अकर्म मीन्स निष्काम कर्म, ये ऐसा कर्म, ये जिस कर्म को करने से ना ही हमको पुण्य मिलेगा, ना ही हमको पाप, ना ही सुख भौतिक संसार का, ना ही दुख। हम इस भौतिक संसार के ये जो सुख दुख जैसा मतम से उससे बाहर निकल सकते, वो होता है अकर्म, उसको कहते हैं कर्म। तो बुद्धिमान व्यक्ति को अकर्म करना चाहिए, क्योंकि आप विचार करके देखिए, सकाम कर्म में भी हम बंधते हैं, अगर हम पुण्य कर्म करेंगे तो पुण्य कर्म से हमको पुण्य भोगना पड़ेगा, पुण्य भोगना मतलब सुख। तो अगर थोड़ा ज्यादा हम लोगों ने पुण्य किया तो यहां पे धनी बनेंगे, पैसा मिलेगा तो उसको अलतू फालतू में उड़ाएंगे, फिर पाप करेंगे, नरक में जाएंगे। मान लीजिए एक्सट्रीम पुण्य किए, स्वर्ग तक जा सकते हैं, तो स्वर्ग में भी क्या होगा, पुण्य का खत्म होगा, वहां पे भी भोग विलास है, फिर वापस क्षीणा पुण्य मर्त्य लोके विसंति, मर्त्य लोक में फिर वापस आ जाएंगे, है कि नहीं। भोगने के लिए इस संसार में रुकना पड़ता है, पाप करेंगे तो नीचे की ओर जाएंगे, यहां कष्ट मिलेगा, कुत्ते बनेंगे, मनुष्य भी मान लीजिए बन जाएंगे, थोड़ा थोड़ा पाप किए तो मनुष्य बने रहेंगे, मगर बहुत कष्ट मिलेगा, निम्न योनि में उनको जन्म मिलेगा और उसको बहुत कष्ट मिलेगा, नहीं तो निम्न जाति में जन्म मिलेगा, बदसूरत रहेगा मेरे जैसा, ऐसा वो सब बीमार रहेगा, ये सब कैसे, और पूर्व पाप कृत्यों का परिणाम है, तो ये सब पाप कर्मों से मिलता है। तो चाहे पाप हो या पुण्य हो, ये दोनों भोगने के लिए इस भौतिक संसार में अपने को रुकना पड़ता है। तो निष्काम कर्म मतलब क्या है, ये कर्म जो हमको इस मृत्यु रूपी सागर, ये जो भव सागर, भवबंधन, ये कर्म के चक्र या मृत्यु के चक्र, जो भी आप बोलो, उसमें से हमको बाहर निकाल देगा, वो निष्काम कर्म। तो है क्या वो निष्काम कर्म, यज्ञार्थात कर्मण्यत्र लोकयम कर्म बंधन, केवल यज्ञ के लिए ही कर्म करना चाहिए, नहीं तो कर्म बंधन, अन्यथा कर्म बंधन लग गया। चाहे आप कोई भी काम करो आपको कर्म बंधन लगेगा, केवल एक ही कार्य से कर्म बंधन नहीं लगेगा, वो क्या है, चल के मंदिर आके इधर दंडवत मारोगे ना, उसको कर्म बंधन नहीं लगेगा, चल के अगर ऑफिस जाओगे ना, उसको कर्म बंधन लगेगा। समझ रहे क्या। तो ये निष्काम कर्म मतलब भगवत सेवा, भगवत भक्ति, हमारे सारे कार्यों को भगवान में अर्पण करना, इस चीज को तीसरे अध्याय में हम लोग भगवत गीता में पढ़ रहे हैं, यही सारे चीजें प्रैक्टिकली नारद पंचरात्र में बताया गया है, घर में भी किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर सकते हैं, हमारे कर्म, भौतिक कर्मों के जो फल हैं, परिणाम है, उसको कैसे हम अर्पण कर सकते हैं, हमारे जो घर की जो संपत्ति, उसको कैसे हम उनकी सेवा में लगाएंगे, हमारे इंद्रियों को कैसे उनकी सेवा में लगाएंगे, हमारे इंद्रियों की राजा मन को कैसे उनकी सेवा में लगाएंगे, ये सारे चीजें डायरेक्टली ये पंचरात्र में, नारद पंचरात्र में नारद मुनि वर्णन करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी का कहना यही है कि इस संसार में समस्त योनियों में सकाम कर्मियों से भरा हुआ है, सभी जगह में सकाम कर्म से, सकाम कर्म के करने वाले जीवात्मा भरे हुए हैं, ताकि नारद मुनि ने इस पंचरात्र ग्रंथ को प्रदान करके हम लोगों को शिक्षा देना चाहते हैं कि हम लोगों को निष्काम कर्म करना चाहिए श्री भगवान की सेवा, जिसके द्वारा हम इस भगवत प्राप्ति या इस भौतिक संसार के दुखमय सागर से निकल कर भगवत प्राप्ति हो सकता है। यही कार्य करने के लिए भगवान स्वयं नारद मुनि का अवतार लिया है, समझ रहे ना, समझना चाहिए क्यों नारद मुनि का अवतार लिया, क्यों, इसके लिए। और एक सेंटेंस है, ब्रह्मांड में सर्वत्र विभिन्न लोगों में तथा समस्त योनियों में सारे बड़े बड़े भक्त इनके ही शिष्य, व्यासदेव इतने सारे लिख डाल दिए, किसके शिष्य, वाल्मीकि मुनि रामायण लिख डाला, किसके शिष्य, प्रहलाद महाराज किसके शिष्य, ध्रुव महाराज किसके शिष्य, इन सारे सभी लोग नारद मुनि के शिष्य। इवन एक बार तो कॉमेडी हुआ, कौन था वो, दक्ष के थे ना, कितने हजार,
10,000
लड़के, एक आदमी एक है शुरुआत में दक्ष मीन्स एक्सपर्ट मतलब मान बच्चा पैदा करने में एक्सपर्ट था, बदमाश नहीं, अच्छे भक्त थे वो। तो वो दक्ष का 10,000 लड़के हुए, क्या नाम था,
हरियश्व,
हरियश्व, वो गए थे बेचारे तपस्या करने के लिए, वहां पहुंच गए नारद मुनि और उनको प्रचार किया, सब लोगों को हरे कृष्ण वाला बना दिया। बड़ी गुस्सा आया उनको, नारद मुनि को बुला के घर में बहुत डांटा। नहीं, वो नारद मुनि खुद गए थे, उनको सोचे कि अभी दुख रहेगा, इसको समझा कि इसको भी भक्त बना दूंगा। जैसे पहुंचे और डांटना चालू, अभिशाप दे दिया उनको, तो तुम एक जगह कहीं टिक नहीं सकता है नारद, तेरे को क्या मालूम साधु बन गया ना, तेरे को क्या मालूम गृहस्थ का जिम्मेदारी क्या होता है, मेरे 10,000 बच्चों को बना, ठीक है देखता हूँ। फिर से 1,000 बना दिया बच्चे, वो 1,000 को जाकर खाली इतना बोले देखो तुम्हारा बड़ा भाई क्या करते हैं, बड़े भाई लोग क्या किए, वही करना चाहिए, बड़ा भाई जो क्या वही करना, वो भी भागे घर से। तब भी बोले कि अच्छा सबको ब्रह्मचारी बना, अभी लड़की पैदा करता हूँ, तभी लड़की बना दिया, अभी लड़कियों को कहाँ ब्रह्मचारी बनाएगा, फिर दारू बनने गए। तब नारद में भटक रहे दक्ष के अभिशाप से, प्रभुपाद कहा करते थे शायद नारद मुनि जैसा मुझे भी अभिशाप लगा हुआ है, क्योंकि मैं भी सभी गृहस्थों के बच्चों को ब्रह्मचारी सन्यासी बना देता हूँ, इसलिए मैं भी भटक रहा हूँ इधर उधर इधर उधर तक। तो इसी प्रकार से श्री प्रभुपाद जी भी नारद मुनि जैसे एक प्रचारक है, भगवान की शक्ति के द्वारा आवेश हुए थे, इसलिए इस प्रकार के कार्यों को कर पाए। क्या है वो उसके शक्ति के बिना ना ही प्रवर्तन, तार शक्ति बिना ना ही प्रवर्तन, भगवान के शक्ति के बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार का पूरा होल वर्ल्ड में तेल का मचाना मतलब वो उनके शक्ति के बिना नहीं हो सकता। एक बार श्री संप्रदाय के एक व्यक्ति बहुत बड़े पंडित कह रहे थे हमारे आचार्य रामानुजाचार्य पूरे भारत में सभी लोगों को प्रचार करके भक्त बनाया था, मगर आपके श्री प्रभुपाद उनसे भी बढ़कर निकल गए, क्योंकि तो भारत में ही प्रचार किए थे काश्मीर से कन्याकुमारी, मगर आपके प्रभुपाद पूरे संसार का चक्कर मार लिए 10 साल में, तुम 20-21 बार ऐसा। तो श्री प्रभुपाद जी ऐसे नारद मुनि जैसे ही बहुत बड़े प्रचारक थे। तो ये उद्देश्य होता है भगवान का, हर एक अवतार में वो कैसे ये न कहना प्रकार है ना, एक भटकते हुए जीवात्मा कैसे मेरे शरण में आ जाए, इसलिए वो अवतार लेते हैं और इस प्रकार से सत्यावेश अवतार। हरे कृष्ण, भगवान श्री नारद मुनि की, श्री प्रभुपाद की, श्रीमद भागवत की।